एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकी साहित्य के एक बहुत ही खास नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनकी एक अहम कृति पर बात करने वाले हैं। नाम है न्यू हैम्पशायर, और ये मतलब कोई कहानी या उपन्यास नहीं है।
हाँ, ये एक कविता है, पूरी किताब जितनी लंबी कविता।
बिल्कुल, 1923 में आई थी और इसे पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। ये उनके संग्रह न्यू हैम्पशायर, ए पोएम विथ नोट्स एंड ग्रेस नोट्स का कह सकते हैं केंद्रीय हिस्सा है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब 1874 से 1963 तक अमेरिकी कविता का एक बड़ा नाम।
हाँ, न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी।
वही, उनकी कविताएं अक्सर दिखने में बड़ी सीधी सादी लगती हैं, जैसे द रोड नॉट टेकन या स्टॉपिंग बाय वुड्स,
लेकिन उनमें गहरे मतलब होते हैं।
बिल्कुल, न्यू हैम्पशायर पहले विश्व युद्ध के बाद के माहौल में लिखी गई। अमेरिका उस वक्त अपनी पहचान, आधुनिकीकरण, परंपरा, इन सब चीजों से जूझ रहा था,
तो ये उस दौर का आईना भी है एक तरह से।
हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉस्ट इस कविता के जरिए न्यू हैम्पशायर को और उसके बहाने शायद अमेरिका को या इंसान के वजूद को ही कैसे देखते हैं।
और ये कविता खास क्यों है, इस पर भी बात करेंगे।
बिल्कुल,
ये कविता ना एक बड़ा ही मिला जुला सा एहसास देती है। एक तरफ तो लगता है जैसे न्यू हैम्पशायर के लिए एक प्रेम पत्र लिखा हो फ्रॉस्ट ने, पर दूसरी तरफ उसमें हल्की सी लेकिन बड़ी पैनी आलोचना भी छिपी है।
अच्छा।
हाँ, फ्रॉस्ट जैसे न्यू हैम्पशायर के लैंडस्केप को, वहां के लोगों को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और उस लेंस से वो अमेरिकी पहचान, मतलब असलियत क्या है, प्रामाणिकता किसे कहते हैं, और किसी जगह का वहां रहने वालों के चरित्र पर क्या असर होता है, इन सब बड़े सवालों को देखते हैं।
और इसकी बनावट कैसी है, मतलब अगर ये सीधी कहानी नहीं है तो?
इसकी बनावट भी अलग है, ये कोई लीनियर नैरेटिव नहीं है, ये ज्यादातर एक विवेचनात्मक कविता है। जैसे आप किसी समझदार थोड़ा मजाकिया दोस्त के साथ बैठे हो और बातें कर रहे हो।
अच्छा।
हाँ, कभी भूगोल पर बात हो रही है, कभी इतिहास पर, कभी वहां की राजनीति, कभी लोगों के मिजाज पर, जैसे विचारों की एक धारा बह रही हो।
तो फिर इसका मतलब केंद्रीय विचार क्या है, फ्रॉस्ट असल में ढूंढ क्या रहे हैं इस पूरी बातचीत में?
मेरे ख्याल से जो मुख्य तलाश है वो ये है कि किसी जगह को
या फिर किसी इंसान या देश को
क्या चीज असली बनाती है।
प्रामाणिक,
प्रामाणिकता,
ऑथेंटिसिटी।
बिल्कुल, वो न्यू हैम्पशायर की सादगी, वहां के लोगों की जो जमीनी समझ है, प्रैक्टिकल विजडम, उसे सामने रखते हैं और फिर उसकी तुलना करते हैं दूसरी जगहों से, खासकर अपने पड़ोसी राज्य वर्मोंट से।
हाँ, मैंने सुना है वो वर्मोंट का मजाक उड़ाते हैं इसमें। हाँ, मजाक में आलोचना करते हैं और शहरों की जो बनावटी आर्टिफिशियल दुनिया है उससे भी तुलना करते हैं।
तो कविता का निचोड़ एक तरह से ये बनता है कि शायद असली चीजें सादगी में है, आत्मनिर्भरता में है, अपनी जड़ों से जुड़ी रहने में है।
तो एक मुख्य तर्क यह हुआ कि प्रामाणिकता दिखावे में नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाइयों को सीधे फेस करने में है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो।
बिल्कुल सही, यही उनका एक बड़ा पॉइंट है।
ये बहुत दिलचस्प है कि एक पूरे राज्य को ही आप एक किरदार की तरह बता रही हैं। लेकिन अगर इसमें पारंपरिक पात्र नहीं है तो फ्रॉस्ट अपनी बात किन के जरिए कहते हैं, कौन है इस कविता के लोग?
हाँ, ये इसकी एक अनोखी बात है। इसमें आपको वैसे पारंपरिक हीरो या विलेन टाइप के कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, इसकी बजाय यहाँ आवाजें हैं, अलग अलग व्यक्तित्व है, और ये सब मिलकर न्यू इंग्लैंड के मिजाज की एक तस्वीर बनाते हैं।
आवाजें?
हाँ, जैसे सबसे बड़ा किरदार तो खुद न्यू हैम्पशायर राज्य ही है, फ्रॉस्ट ने उसे जैसे मानवीकृत कर दिया है, उसे एक आवाज दी है।
अच्छा।
फिर खुद फ्रॉस्ट है कविता के नरेटर, वो एक ऑब्जर्वर भी है और कहीं ना कहीं उस दुनिया का हिस्सा भी। उनकी अपनी यात्रा इस कविता में यह समझने की है कि उन्हें इस जगह से इतना जुड़ाव क्यों महसूस होता है। वो धीरे धीरे एक बाहरी देखने वाले से न्यू हैम्पशायर के चरित्र पर अधिकार से बोलने वाले बन जाते हैं।
और कौन है?
फिर है न्यू हैम्पशायर की एक सामूहिक आवाज, मतलब वहां के आम लोग, किसान, थोड़े चालाक किस्म के नेता, छोटे कस्बों के वो आजाद सोच वाले लोग, ये सब मिलकर उस जगह के खास गुण दिखाते हैं, जैसे अपनी मर्जी से जीना, बाहर वालों पर थोड़ा शक करना, रूखा सा मजाक।
हाँ, वो ड्राई ह्यूमर।
बिल्कुल। और वो समझदारी जो शायद वहां की पथरीली जमीन और कड़कड़ाती ठंड से लड़कर ही आती है।
सही।
और हाँ, बाहरी दुनिया के लोग भी हैं, शहरों के तथाकथित सभ्य लोग, समाज सुधारक, दूसरे राज्यों के लोग, खासकर वर्मोंट वाले,
जिनकी वो आलोचना करते हैं।
हाँ, उनका रोल अक्सर न्यू हैम्पशायर के तौर तरीकों पर सवाल उठाना होता है, या फिर शायद अंत में उसकी अहमियत को समझना। और शायद सबसे अहम वो है वहां की जमीन, लैंडस्केप,
जमीन खुद।
हाँ, पहाड़, जंगल, खेत, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। फ्रॉस्ट दिखाते हैं कि ये माहौल कैसे लोगों के चरित्र, उनके मूल्यों को गढ़ता है। ये एक्टिव पार्टिसिपेंट है।
क्या बात है। तो पात्र असल में लोग कम और अलग अलग नजरिए, ताकतें, यहाँ तक कि वो जगह खुद ज्यादा हैं जिसका मानवीकरण किया गया है।
बिल्कुल, ये चरित्र चित्रण का एक बहुत ही अनूठा तरीका है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जगह की पहचान सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति, उसके माहौल से कितनी गहरी जुड़ी होती है।
सही कहा।
तो अगर ये सीधी कहानी नहीं है तो कविता का प्रवाह कैसे बनता है? फ्रॉस्ट अपने विचार कैसे सामने रखते हैं?
ये एक वैचारिक यात्रा की तरह है। इसमें कई पड़ाव आते हैं, आप कह सकती हैं मूवमेंट्स हैं। शुरुआत होती है एक घोषणा से। फ्रॉस्ट कहते हैं, मुझे न्यू हैम्पशायर पसंद है। लेकिन साथ ही थोड़े रक्षात्मक भी हैं। वो मानते हैं कि ये जगह सबके लिए नहीं है, ये कठोर है, ये बहुत कुछ मांगती है।
तो यहीं से वो तनाव शुरू हो जाता है, प्यार और आलोचना का।
बिल्कुल, ये टेंशन पूरी कविता में बनी रहती है। फिर वो जैसे हमें न्यू हैम्पशायर की सैर पर ले जाते हैं। वहाँ का भूगोल, मौसम, इतिहास, पथरीली जमीन पर खेती की मुश्किलें, पहाड़ों की खूबसूरती और वो कड़कड़ाती ठंड, कैसे वो इंसान को मजबूत बनाती है।
तो ये सिर्फ नजारों का वर्णन नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाना है कि माहौल इंसान को कैसे ढालता है। फिर बीच के हिस्सों में फ्रॉस्ट आज के मुद्दों पर भी आते हैं, राजनीति, समाज, लेकिन हमेशा न्यू हैम्पशायर के नजरिए से।
जैसे?
जैसे वहां के लोग बाहरी दखलंदाजी को शक से क्यों देखते हैं, या आधुनिकीकरण को लेकर उनका जो सतर्क रवैया है। फ्रॉस्ट उसे पिछड़ेपन की तरह नहीं दिखाते, बल्कि जैसे वो अनुभव से आई हुई समझदारी हो।
और वो वर्मोंट वाली तुलना, वो काफी मजेदार लगती है।
हाँ, वो हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। फ्रॉस्ट न्यू हैम्पशायर की तुलना वर्मोंट से करते हैं। उनके मुताबिक वर्मोंट खुद को पर्यटकों के लिए खूबसूरत दिखाने की कोशिश में लगा रहता है।
अच्छा, मतलब एक तरह का दिखावा।
हाँ, फ्रॉस्ट का इशारा यही है कि न्यू हैम्पशायर अपनी असलियत को लेकर ज्यादा ईमानदार है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं। ये तुलनाएं न्यू हैम्पशायर के गुणों को और उभारती हैं, उसकी बेपरवाही, मुश्किलों से निपटने का सीधा तरीका और किसी भी तरह के रोमांटिसाइजेशन से बचना। और जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है वो और गहरी होती जाती है। फ्रॉस्ट पर प्रामाणिकता, जगह और पहचान का रिश्ता और मुश्किल रास्ता चुनने के क्या मायने हैं, इन सवालों में उतरते हैं।
कैसे माहौल हमें बनाता है और हम माहौल को।
बिल्कुल, और अंत में वो इन सब धागों को मिलाकर एक तस्वीर बनाते कि न्यू हैम्पशायर दुनिया से जुड़ने का एक खास तरीका है। खरा, व्यवहारिक, थोड़ा अड़ियल, पर अपनी जड़ों में गहरा और सच्चा।
समझ गया। तो ये संरचना सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि जैसे आप किसी जगह को परत दर परत जान रहे हों, कभी इतिहास, कभी लोग, कभी नजारे, और फिर उन सब के पीछे का दर्शन।
बिल्कुल।
चलिए अब थोड़ा उन बड़े संदेशों या थीम्स पर ध्यान देते हैं जो फ्रॉस्ट इस कविता से देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है, असलियत बनाम बनावट का, प्रामाणिकता।
हाँ, ये कविता का दिल है। फ्रॉस्ट न्यू हैम्पशायर को एक ऐसी जगह की तरह दिखाते हैं जहाँ लोग सीधे सीधे हकीकत से टकराते हैं, चाहे वो कठोर मौसम हो, मुश्किल जमीन हो या आर्थिक तंगी।
और इसी सीधे टकराव से वो प्रामाणिकता या खरापन आता है।
हाँ, फ्रॉस्ट का यही मानना लगता है, जो शायद ज्यादा आरामदायक जगहों पर आसानी से न मिले। ये बात वर्मोंट की उनकी आलोचना और शहरी दुनिया की नफासत पर उनके शक में साफ छलकती है।
और दूसरा बड़ा विचार, जगह और चरित्र का रिश्ता, कैसे हमारा माहौल हमें गढ़ता है।
सही, फ्रॉस्ट का मानना है कि न्यू हैम्पशायर का जो चुनौतीपूर्ण माहौल है, वही वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर, व्यावहारिक और आसान रास्तों पर शक करने वाला बनाता है।
ये अमेरिकी मानस की पुरानी धारणाओं से भी जुड़ता है ना, जैसे फ्रंटियर का अनुभव, जमीन से जुड़ाव।
बिल्कुल, लोकतंत्र और परिदृश्य के बीच का रिश्ता, ये सब बातें इसमें गूंजती हैं।
और एक और बात जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी, कठिनाई को महत्व देना।
हाँ, ये बहुत मजबूत थीम है आज की दुनिया में, जहाँ हम आराम और आसानी के पीछे भागते हैं। फ्रॉस्ट उसके बिल्कुल उलट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुश्किलों को चुनना, ऐसी जगह रहना जहाँ मेहनत और धीरज की जरूरत हो, उसमें एक अलग ही कीमत है, एक वैल्यू है
कि वो कठोर जलवायु और मुश्किल जमीन बाधाएं नहीं बल्कि चरित्र बनाने वाले अनुभव हैं।
बिल्कुल, ये एक तरह से हमारी आराम पसंद सोच को चुनौती है। क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि संघर्ष हमें बेहतर बना सकता है?
सही कहा, और इसी से जुड़ा है परंपरा और बदलाव का सवाल भी।
हाँ, फ्रॉस्ट न्यू हैम्पशायर को ऐसी जगह की तरह देखते हैं जो बदलती तो है पर धीरे धीरे, सावधानी से, जो काम का है उसे बचाते हुए।
ये 1920 के दशक के अमेरिका के लिए तो बहुत अहम रहा होगा जब तेजी से बदलाव आ रहे थे।
बिल्कुल, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण। फ्रॉस्ट जैसे पूछ रहे हो, क्या हम अपनी जड़ों को खोए बिना आगे बढ़ सकते?
इन सब गहरे विचारों को व्यक्त करने के लिए फ्रॉस्ट का अंदाज भी तो बहुत खास है, उनकी शैली।
हाँ, उनकी शैली ऊपर से देखने में एकदम आम बातचीत जैसी लगती है।
वो ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ना?
हाँ, ज्यादातर अतुकांत आयाम्बिक पेंटामीटर, मतलब पंक्तियों में एक रिदम तो होती है, एक मीटर होता है, पर अंत में तुकबंदी नहीं होती।
इससे वो भारी भरकम नहीं लगती।
हाँ, बोलने के अंदाज के ज्यादा करीब लगती है, जैसे कोई आपसे सच में बात कर रहा हो।
और उनके खास हथियार विडम्बना और अल्पकथन,
आयरनी एंड अंडरस्टेटमेंट।
बिल्कुल,
जैसे वो वर्मोंट के बारे में कहते हैं कि वो बहुत सुंदर होता जा रहा है, इसमें तारीफ कम ताना ज्यादा है।
हाँ हाँ
हाँ,
या न्यू हैम्पशायर की कड़कड़ाती सर्दियों को बस ताजगी भरा कह देना, ये कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाने का उनका अपना तरीका है। इसमें ह्यूमर भी है और एक गहराई भी।
और हमने पहले बात की थी मानवीकरण की, राज्य को ही किरदार बना देना।
हाँ, और कविता में कई अलग अलग आवाजें भी सुनाई देती हैं, पड़ोसी, नेता, बाहर से आए लोग। ऐसा लगता है जैसे कोई टाउन मीटिंग चल रही हो जहाँ सब अपनी बात रख रहे हैं। इससे कविता को एक डेमोक्रेटिक फील मिलता है।
और भाषा वो भी तो बहुत जमीनी लगती है।
हाँ, वो आम बोलचाल के शब्द, स्थानीय मुहावरे इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। इससे कविता उस खास जगह और संस्कृति से गहराई से जुड़ जाती है और उसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। और पत्थर की दीवारें, खेत, पहाड़, ये सिर्फ नज़ारे नहीं रहते, ये प्रतीक बन जाते हैं चुनौतियों के, इंसानी कोशिशों के, प्रकृति के साथ रिश्ते के।
सच में यही फ्रॉस्ट का जादू है, साधारण भाषा में, बातचीत के लहजे में इतनी गहरी, सोचने पर मजबूर करने वाली बातें कहना। कुछ पंक्तियां तो बस दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ बिल्कुल।
कौन सी पंक्तियां आपको खासतौर से याद आती हैं?
एक तो वो शुरुआत वाली पंक्ति मुझे बहुत पसंद है, आई चूज टू बी अ प्लेन न्यू हैम्पशायर फार्मर विथ एन इनकम इन कैश ऑफ से 1000 From, say, a publisher in New York City.
हाँ, मैं एक साधा न्यू हैम्पशायर किसान बनना चुनता हूँ जिसकी नकद आय हो, मान लीजिए 1000, मान लीजिए न्यूयॉर्क शहर के एक प्रकाशक से।
ये कमाल की है,
है ना?
वो खुद को एक साधारण किसान कहते हैं पर ब्रैकेट में फौरन ये भी बता देते हैं कि पैसा तो न्यूयॉर्क के प्रकाशक से आता है। ये उनकी ईमानदारी है और खुद पर व्यंग करने की क्षमता भी। वो जानते हैं कि वो पूरी तरह से वो सादे किसान नहीं है और इस कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार करते हैं। ये कविता को किसी आदर्शवादी नारे जैसा बनने से बचाता है।
बिल्कुल, वो विडंबना बेहतरीन है। और एक पंक्ति जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, The only cure for certain ills is not to cure them।
हाँ, कुछ बीमारियों का एकमात्र इलाज उन्हें ठीक ना करना है।
ये फ्रॉस्ट का खास अंदाज है, विरोधाभास में बात कहना।
सही,
ये पंक्ति हमें एक तरह से उकसाती है। क्या हर मुश्किल का हल उसे खत्म कर देना ही है, या कुछ परेशानियां, कुछ कठिनाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें झेलना जरूरी है, क्योंकि शायद वही हमें कुछ सिखाती हैं या हमारे चरित्र को मजबूत बनाती हैं।
बिल्कुल, ये पंक्तियां जैसे फ्रॉस्ट के सोचने के तरीके की चाबियां हैं, उलझा हुआ, सूक्ष्म और अक्सर विरोधाभासी। वो आसान जवाब नहीं देते।
हाँ, वो हमें सवालों के साथ छोड़ देते हैं। तो अंत में ये कविता पाठक पर कैसा असर छोड़ती है, क्या भावनाएं जगाती है?
ये कई तरह की भावनाएं जगाती हैं, थोड़ी नॉस्टैल्जिया, अपनी जगह पर गर्व का एहसास, हल्का सा मजाक और गहरा दार्शनिक चिंतन। इसे पढ़ने के बाद अक्सर लोग अपनी जगह, अपने माहौल और अपनी पहचान के रिश्ते के बारे में सोचने लगते हैं, चाहे उन्होंने न्यू हैम्पशायर कभी देखा भी ना हो। और जो सबसे स्थायी छाप छोड़ती है वो शायद ये सवाल है कि हम जगहों और लोगों में असल में किस चीज को महत्व देते हैं। फ्रॉस्ट हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सतही चमक दमक और आराम वाकई उन गुणों से ज्यादा कीमती है जो चुनौतियों का सामना करने और अपनी असलियत पर टिके रहने से आते हैं।
बिल्कुल, ये कविता हमें अपने आसपास की दुनिया से, अपनी जड़ों से जुड़ने के मायने पर सोचने को कहती है। आज के दौर में जब लोग इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि कहीं का होना असल में क्या मतलब रखता है।
सही बात है।
हम आराम और विकास के बीच संतुलन कैसे साधें, और क्या सच में मुश्किलों से जूझने में कोई सार्थकता है, ये सवाल गूंजते रहते हैं।
और यही फ्रॉस्ट की खूबी है, वो एक छोटे से राज्य की कहानी कहते हुए पूरी इंसानियत से जुड़े सवाल उठा देते हैं।
हाँ, किसी भी जगह को अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वो पूरी मानव स्थिति का आईना बन सकती है।
बिल्कुल।
तो शायद ये कविता हमें यही सिखाती है कि प्रामाणिकता अक्सर सादगी में और चुनौतियों को गले लगाने में मिलती है, उनसे भागने में नहीं।
और ये कि किसी जगह को सचमुच समझना है तो उसकी ऊपरी सुंदरता से आगे बढ़कर उसके मिजाज, उसके मूल्यों की गहराई में उतरना होगा।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।